Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadam's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhoktam jo bhokta bhogya. जैसे ध्याता ध्यान देह ज्ञाता ज्ञान गे बनता है तैसे भोक्ता भोग्य भोग्य भोजन हो गया। ये तीनों अलग त्रिपुटी कहलाती है। इनको जानने वाला जीवात्मा है ज्ञाता, और घे पदार्थ हुआ जो वस्तु जानने लायक है, और ज्ञान हुआ उसका वस्तु का। ये तीनों त्रिपुटी हैं। ये आत्मा में तीनों त्रिपुटी नहीं है। भोक्ता भोग्यम भोज्यम यद भवेत तेभ्यो विलक्षणा साक्षी, उनसे साक्षी विलक्षण है। विलक्षण माने उसका लक्षण दूसरा है। कौन है? बोले चिन्मात्र। वो चिन्मात्र है, शिव स्वरूप है। वहां सुख दुख नहीं है, वहां खडूर्मी नहीं है, वहां कोई विकार नहीं है। वो तो बिल्कुल स्वरूप से निर्विकार है। ये बात जब आपके समझ में आ जाएगी, करे मैं तो बिल्कुल निर्विकार हूं, चिन्मात्र हूं, मैं अपने अज्ञान को, मैं अपनी मूर्खता को जानता हूं। सत्ता कोई दूसरी है नहीं जो सजाती होता और विजाती होता, ना सजाती विजाती, सुगत भेद शून्य, असंग अखंड अनंत अपना आत्मा है। ये मन से मिलकर के शोक मोह वाला होता है, और प्राणों से मिलकर भूख प्यास वाला होता है, शरीर से मिलकर जीवन मरण वाला होता है। वास्तव में इसका कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है। ये यदि आप चिंतन करें, शांत बैठ करके ध्यान योग बताया गया, आप यही चिंतन करें, चित मात्रो हम तो चिन्मात्र हैं, शिवो हम चिदानंद रूपो हम चिदानंद रूप हैं। यदि यह निश्चय करें, ये चिंतन करें, तो आप निर्विकार हो सकते हैं। मई सकलम जातम मई सर्वम प्रतिष्ठितम। आप कहते हैं कि ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो आपने देख ली, इसका जागृत जीवन भी देखा, स्वप्न में दुनिया बनाई तब देखा, सुसुप्ति जब कुछ नहीं रहा तो भी मैं रहा, तो मेरी सत्ता अटल अचल अविनाशी है। ये नियम है। निर्विकार वही होगा जो आकार रहित है, निराकार है वही निर्विकार होगा। आकारवान तो कोई न कोई विकार होगा ही, और अनंत जो होगा वो सर्वव्यापक होगा। वो तो एक आप उसकी विशेषता जान जाए तो सब लग जाएगा। और जो निर्विकार है, अनंत है, असंग है, अखंड है, आनंद है, वही तो व्यापक होगा, वही अविनाशी होगा, चिद्रूप होगा। तो कहते हैं मेरे से ही सब उत्पन्न हुए। अभी ये मालूम ये पड़ता है कि जगत को माया ने बनाया। अरे बाबा, माया नाम की कोई चीज हो तब ना, माया नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि ये जो कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, ये ऐसे है जैसे शीशा में आपका मुंह दिखता है। दिखता तो है, लेकिन मुंह गर्दन में लगा हुआ है, शीशा में नहीं है, वहां कहां होके घुसेगा। लेकिन उससे क्या है, उससे व्यवहार बन जाता है। अपने मुंह में लगा हुआ कीच काचड़ छुटा लिया जाएगा, ये लाभ होता है। इसी तरह से व्यवहार शुद्धि हो जाती है। महात्मा लोग कहते हैं परमार्थ तो बना ही बना है, अपना आत्मा है, लेकिन व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। व्यवहार में राग द्वेष, अस्मिता राग द्वेष न हो, किसी के प्रति सद्भावना हो, सत प्रेम हो आ? और जब सद्भावना होगी, सत प्रेम होगा, सबके साथ व्यवहार शुद्ध होगा, तो आपका जीवन बन जाएगा। क्योंकि यही तो आत्मा का लक्षण है, राग द्वेष होना ही ये जीव का लक्षण है। किसी के प्रति सट गए, किसी के प्रति हट गए, तो हटाओ और सटाओ का व्यवहार चलने लगता है। अगर ये व्यवहार न हो, काम बन जाए। मई एव सकलम जातम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम। अब अगर देखो तो ये जो जगत नाम रूपात्मक बना है, ये क्या है? वाचारम्भणम विकारो नामधेयम। ये वाचारम्भण है, श्रुतियों ने बताया कि ये केवल कहने मात्र को है। वाचारम्भण माने बात शुरुआत करनी। कैसे शुरुआत करते हो? आज कोई भोजन कर रहा है कोई, और आए सज्जन, अच्छा आप भोजन कर रहे हैं क्या? अतो तो दिख ही रहा है भोजन कर ही रहे हैं। अच्छा किवाड़ बंद करने लगे, कहीं जा रहे, अब तो जा रहे हो कहीं, तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, आइए आइए आइए। अब बताइए, वाचारम्भण है ना। जब जा रहे हो, उसने भी देखा है, और दूसरी बात एक ये न भी देखा हो, तो अब जो जा रहा है उसे तो कहना चाहिए कि हाँ जा रहे हैं, वो भी कह देता। इसी को वाचारम्भण कहते हैं। ये केवल वाचारम्भण है नहीं, सत्य नहीं है। है पर सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। और मिथ्या पदार्थ को देखने में, सुनने में व्यक्ति अच्छा लगता है। जैसे आप देखिए, एक कुत्ता सड़क पर चला जा रहा है, आप देखते हैं, और वही कुत्ता जब टीवी में आज देखने लगता है तो बड़े गौर से देखते हो, अरे तो इसका मतलब बिंब से प्रतिबिंब ज्यादा अच्छा लगता है। यह मिथ्या पदार्थ को देखने में बड़ा मजा आता है। है मिथ्या, वही जब प्रतिबिंब रूप में आने लगता है तो बड़े प्रसन्न होते। तो मिथ्या पदार्थ है माने है, लेकिन प्रतीत हो रहा है, लेकिन सत्य नहीं है, परिवर्तनीय है। तो जिस परिवर्तन को आप देख रहे हैं, नाम रूपात्मक जगत, वो नाम रूपात्मक जगत किसने पैदा किया? बोले मई एव सकलम जातम, मेरे ही में तो उत्पन्न हुआ, मेरे मन ने बना लिया। अच्छा, आप मनोराज्य करते हो, बैठे 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 मनोराज्य हुआ। एक सत्संग में सज्जन आ गए, तो वो एक बार के बीच में चिल्लाए पड़े, बोले अरे अभी हमें देखेंगे चल के लौट के तेरे को। तो पड़ोसी ने कहा कि क्या बात है? बोले अरे वो मूंगफली का ठेला ना, कहा यहां का मूंगफली का ठेला? कि अरे हम समझे ऐसा हुआ कि मैं जब घर से चला तो हम रास्ता में आ रहे सत्संग में, मूंगफली आ गई, तो हमने कहा भैया तौल दो थोड़ी एक छटांग, तो तौलने लगा, उसने छिलका चढ़ा दिए। तो जैसे छिलका चढ़ाए तैसे मैं बिगड़ गया, छिलका क्यों चढ़ा रहे? तो मैंने भी लग रहा झोरी की, उसने भी किया, एक चांटा मार दिया, हमने भी मार दिए दो, और तब तक पुलिस आ गई तो दोनों को पकड़ लिया। हम थाने में चले गए, तो हमने पिताजी का नाम लिया, बताया, तो उसने कहा जाओ आज छोड़े दे रहे हैं, लेकिन फिर भविष्य में गलती न करना। तो क्या बताएं, मैं सत्संग सुन रहा था बाबा जी का, और एकदम वो ठेला आ गया सामने। अब देखिए, ये जो ठेला आया वो है नहीं, मनोराज्य में है तो आप ही अकेले। तो जैसे आप अकेले हैं और दिखाई प्रतीत हुआ, अनुभव में आया, उसी प्रकार से नाम रूपात्मक ये जगत प्रतीत तो होता है, लेकिन है नहीं, सत्य नहीं है। है प्रतीत तो हो रहा है, प्रतीत माने होता है प्रतिपूर्वक इणगत उधातु, माने जैसे शीशा में मुंह दिखता है ना, ऐसे उलट के अपना प्रतिबिंब देखना, ये प्रतीति कहलाती। उलट के अपना प्रतिबिंब देखना ये प्रतीति। तो कहते हैं ये तो मेरी कल्पना है, मेरी कल्पना में ये सब उदय हो गया, क्यों? मय्येव सकलम जातम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम, और मेरे में ये कल्पना हुई, मेरे में सब ये दिखाई दे रहा, और मई सर्वम लयम याति, मेरे में ही सब डूब गया। जैसे स्वप्न देखते हो, तमाम जगत दुनिया बनाई ली, और जब जगे तो कुछ नहीं, इसका मतलब सब तुम्ही में तो समाया गया। इसी प्रकार से मनोराज्य है, मनोराज्य बड़ा विचित्र होता है, और उसी मनोराज्य के कारण सुखी दुखी होते रहते। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि एक सज्जन जा रहे थे, तो उनके पास देहात में राब बनती है, वो राब जरा लिक्विड गुड़ बनता है, तो वो एक घड़ा लिए थे, ससुराल से आए थे, तो पोजीशन बहुत बनाई जाती है ना ससुराल में, आ जाओ ससुराल नहीं जा रहे तुम, तो मुंह पोछा रूमाल से, तब तक एक कुली आ गया, बोले कुली 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 ये ले चलोगे? बोले हाँ ले चलेंगे, 5 रुपया लगेगा, बोले देंगे। 5 रुपया में वो घड़ा उसने रख लिया, और बोले ओहो 5 रुपया आज तो मिल जाएंगे। अब बाबूजी रूमाल से कभी कभी मुंह पोंछ लेते हैं, जरा धूप भी थी, और पीछे चले जाते हैं, घड़ा उधर है, कुली 5 रुपया मिलेंगे तो क्या करेंगे, खाएंगे नहीं, मुर्गी ले लेंगे, और मुर्गी से मुर्गी बहुत हो जाती हैं, तो फिर उन सबको बेच के गाय ले लेंगे, और फिर डेयरी खुल जाएगी, और जब बहुत सी गायें बहुत सी भैंसें हो जाएंगी, डेयरी हो जाएगी, तो इनकम भी अच्छी हो जाएगी, मकान बन जाएगा, और मकान जब बन जाएगा, और घड़ा धरा ऊपर, और मकान जब बन जाएगा तो कोई ब्याह भी कर देगा, अभी तो कोई कहता नहीं हो, तेरे न मकान है न दुकान है, मकान दुकान होना चाहिए ना, तो विवाह हो जाएगा, फिर बाल बच्चे भी होंगे, तो हम बढ़िया सा मकान बनवाएंगे, उसमें पीछे मशनर लगा होगा, और बच्चे आएंगे कि चलो माताजी बुला रही, भोजन तैयार है, तो हम गर्दन हिला के कह दिया करेंगे अभी नहीं चलेंगे, तो घड़ा कूद के नीचे गिर पड़ा, जब घड़ा नीचे गिर गया तो वो फूट गया, तो बाबूजी पीछे चले, अरे बोले घड़ा फोड़ दिया, बोले रुक जा, पहले हिसाब लगा लो, काय के हिसाब कि नुकसान किसका ज्यादा हुआ, हमारे तो बाल बच्चे और सब घर भर सब चला गया, तुम्हारे 2 पैसा घर ही फूट गया। तब बाबू जी ने समझा, करे ये तो पागल है, क्या बताएं, हमने रखवा दिया। तो ये मनोराज्य जो होता है वही सुखी दुखी करता रहता है। देखो इस उदाहरण से ये पता चलता है कि ये उतनी देर में सुखी हो गया और उतनी देर में दुखी। अभी अभी आप भूत का चिंतन करने लगो, एक जमींदार हमें मिले तो कहने लगे क्या बताएं, हमारा भी एक रुतवा था, हाथी था, और तमाम ये था वो था, इतने लोग थे, आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है, हाथी की जगह कुत्ते घूम रहे हैं, अब भवन बना था सो खंडहर हो गया। तो हमने कहा वर्तमान का मजा ले, ये क्या भूत की सोच रहे, भूत बैठा रहे दिल में, जिस दिल दिमाग में भगवान बैठा है, आनंद सुधा बैठा है, और वहां मुर्दा लाए लाए के जमा करो, ये कोई भलमनसात है क्या, आप लोग तो नहीं रखते हैं ना? नहीं नहीं, मुर्दा क्यों लाए, भूत को कभी सोचना नहीं चाहिए। भविष्यम नानुसंधत्ते नातीतम विचारेत्यसौ वर्तमान निमेषंतु हसत्तेवाति वर्तते। भविष्य का कभी अनुसंधान न करो, भविष्य का वही अनुसंधान करते हैं जिनको भाग्य पर और ईश्वर पर विश्वास नहीं है, न ईश्वर पर विश्वास है न भाग्य पर। अरे भाई ईश्वरवादी हो तो कहो भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, और भाग्यवादी तो जो हमारी भाग में आएगा उसे कोई मिटेगा नहीं, वो तो होगा ही होगा। तो भाग्य और ईश्वर दोनों पर विश्वास न करने वालों को भय लगता है भविष्य का, हाँ ऐसा न हो जाए ऐसा न, अरे होना होगा तो तुमका रोक लोगे, वो तो होगा ही। सैकड़ों बार सुन चुके कि भाग्य भोगना पड़ेगा, चाहे करा के चाहे सराह के, अभी आपके ऊपर है, कि आप करा के सहते हो कि सरा के भाग भोगना पड़ेगा। एक रिक्शा चलाने वाला दिन भर बेचारा रिक्शा चलाता है और शाम के जितना पैसा मिला उसको पी लेता है बोतल। अब जो और एक सेठ जी आराम से बैठे मजे मसलन लगाए बैठे रहते हैं। तो ये तो भाग की चीज है, भाग में जो होगा सो होगा ना। तो भाग्य और ईश्वर पर विश्वास न करने वालों को भय लगता है, हाय ऐसा न हो जाए। जरा सोचो, आप तो निर्विकार अखंड अनंत अव्यक्त स्वरूप असंग आत्मा है, तो आप में कहां ये आ सकता है भला। लेकिन व्यक्ति विचार नहीं करता। तो मय्येव सर्वम लयम याति, और बाद में सब हम ही में समा जाता है। इसलिए ब्रह्माद्वयम अस्मि अहम्, हम अद्वय ब्रह्म ही हूं। मैंने कई बार आपको निवेदन किया कि दो बूंद पानी भी कहीं भरा है तो वो समुद्र ही है। एक गिलास में गंगा जल भरा, सोचना। अब वो गंगा जल जब ले आए तो उस गंगा जल में झांक के चेला ने देखा, अरे ये गंगा जल है? बोले हाँ गंगा जल है भाई। कहा गंगा जल होता तो इसमें मछलियां नहीं है, कछुआ नहीं है, हजारों आदमी स्नान कर रहे हैं, नावें हैं, नावें तो होना चाहिए था। तो समझाया कि भैया नावें और मछलियां कछुआ ये नहीं है, लेकिन है ये गंगा जल। ये गंगा जल गिलास की परिधि में है, तो गिलास की परिधि में जैसे गंगा जल है ऐसे शरीर की परिधि में आत्मा का अनुभव होता है। और कहते हैं शरीर में आत्मा है। परेण नाकम निहितम गुहायाम, बुद्धि में है तो बुद्धि की गुफा में विराजमान आत्मा है, ये कहते हैं। लेकिन जरा सोचो, गिलास का पानी है तो गंगाई जल, केवल गिलास की परिधि हटा दो और उधर मछलियां और ये सब हटा दो तो दोनों की एकता हो गई। जल जल तो एक है। जैसे आपने सुना था कि स्वयं देवदत्ता, ये वही देवदत्त है। तो यह वही कैसे हो सकता जो 10 वर्ष पहले था, वो अब कैसे हो सकता? तो 10 वर्ष का जो पतला दुबला था अब मोटा हो गया, अब 10 वर्ष बीत गई तो काल बीत गया, देश बीत गया। ये काल और देश अलग कर दो, चेतन चेतन तो एक ही है। इसी प्रकार से गिलास और मछलियां ये अलग कर दो तो जल जल तो एक ही हुआ। इसी प्रकार से वो कहता अद्वय ब्रह्म मैं ही हूं, अहम अस्मि मैं ही हूं। तो अब कौन हुआ? एक चिन्ह मात्र हुआ। ये देखो, पहले आत्मा की असंगता, निर्विकारता, अखंडता, आनंद स्वरूपता ये बताई, और फिर ब्रह्म की बताई, और दोनों की एकता बताई। जिस आसुलायन ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि महाराज ये हमें बताइए, अधि भगवान ब्रह्म विद्याम वरिष्ठम, हे भगवान हमें ब्रह्म विद्या बताइए। कैसी? बोले सदा सदभी सेव्यमानाम निगूढ़ाम, जो बड़े बड़े विद्वान हमेशा जिसका चिंतन करते रहते हैं, और यथा चिरा सर्व पापम विपोह्य, और सब पाप दूर हो जाए जिससे। तो ये अब बताया आकर के कि जिस पाप को आप बता रहे हो वो पाप क्या है? वो देह के साथ अंतःकरण के साथ एक मिलना ही पाप है, क्योंकि उसी से तो सुख दुख उनके फल मिले। अगर आप अंतःकरण से ना मिले होते, शरीर से ना मिले होते, तो ये क्यों दुख भोगना पड़ता? तो ब्रह्मा जी यही समझा रहे हैं, यथा चिरा सर्व पापम विपूय और परात्परम पुरुषमुपैति विद्वान। विद्वान लोग जिस परात्पर परम पुरुष को प्राप्त करते हैं वो हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने तुम्हें परात्पर परमात्मा बताया, ब्रह्म बताया, आत्मा बताई, और ब्रह्म और आत्मा की दोनों की एकता भी समझाई कि अरे भाई दो बूंद भी पानी कहीं भरा है तो समुद्र ही है, इसलिए उसको जल समझना चाहिए कि जल, ये जल जैसा तैसे, ये जल इसमें जल जल में तो अंतर है नहीं। अरे एक बल्ब लगा है 25 पावर का और 1000 पावर की बिजली लगी, तो हम पूछते हैं कि वो जो 25 पावर का बल्ब है उसमें जो बिजली है और 1000 पावर की बिजली, बिजली तो एक ही हुई ना, पावर अकेला अंतर है भाई, उसमें उतना आता है, एक एक 100 पावर का बल्ब लगाओगे तो उसमें ज्यादा प्रकाश होगा, 25 पावर का 0 लगा दो तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बिजली तो दोनों में आई लेकिन जिसमें जितनी पावर शक्ति है उतना लेगा। इसी प्रकार से संसार की दशा है। संसार में सबसे बड़ी बात एक यह है जो जानने लायक है कि जिसको हम सत्य समझते हैं, अपरिवर्तनीय समझते हैं, वो अपनी वजह से समझते हैं। जासु सत्यता तेज माया, भास सत्येव मोह सहाया। ये मोह की बदौलत सत्य की तरह मालूम पड़ता है, सत्य है नहीं लेकिन चूंकि जड़ के साथ संबंध कर लिया ना, तो जड़ के साथ संबंध करने से जड़ हो गए, अपने को भी कहने लगे। घोड़ा पे बैठा है कोई व्यक्ति, तुम कौन हो? बोले मैं घोड़ा। अरे घोड़ा पे बैठे हो कि घोड़ा हो गए? घोड़ा पे बैठने वाला घोड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि मेरा का टीका लगाने वाला मैं नहीं होता। जहां जहां मेरा जुड़ेगा वो मैं कैसे हो सकता? मेरी पुस्तक, मेरा कलम, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, तो मेरा जहां जुड़ता है वहां मैं नहीं होता। एक व्याकरण का बड़ा ठोस नियम है, दुष्ट संबंधा। संबंध हमेशा द्वैत में होता है, दो हों दो, जैसे ये उंगली है ना, ये उंगली दो है, इसके बीच में गैप है, तो बीच का गैप जो होता है वही द्वैत होता है। इसका मतलब ये सर्वव्यापक परमात्मा, उसमें द्वैत हो ही नहीं सकता, उसमें संबंध होगा ही नहीं। दो चीजें हों तब ना संबंध हो। संबंध माने सम उपसर्ग है, बंधु प्लस धन, अपना भाईचारा वगैरह और धन दौलत प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, उसी के साथ सम उपसर्ग लगा दिया तो संबंध बन गया। इसका आत्मा से कोई मतलब ही नहीं है। तो जिसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है उसी तरह से मैं आत्मा चिन्मात्र हूं। तो चिन्मात्र आत्मा और परमात्मा, तो परोक्ष परमात्मा है और साक्षात अपरोक्ष आत्मा है। अपरोक्ष और परोक्ष हटा दो तो दोनों आत्मा ब्रह्म एक हो गए, दोनों की एकता है, दोनों एक साथ हैं, और दोनों नहीं बल्कि एक ही है। जल जल एक सा जैसे दिखाई देता है, ऐसे व्यापकता जब नष्ट हो जाती है, व्यापकता हम मानते नहीं है, तभी गड़बड़ होता। दृष्टा को व्यापक न समझने के कारण दृश्य दिखाई देता है। अगर आप दृष्टा को व्यापक समझ लो तो दृश्य गायब, दृश्य नाम की कोई चीजें नहीं रहेगी। असल में आप दृष्टा को व्यापक नहीं समझते। आज जो मन का साक्षी है वही दृश्य का अधिष्ठान भी है। ऐसे चिंतन करते समय जरा ध्यान दो कि जो मन का साक्षी है वही तो दृश्य का, जो दिखाई दे रहा है उसका अधिष्ठान भी वही है। तो जब मैं ही हूं, इसीलिए उसने कहा मई ये सकलम जातम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम, मई सर्वम लयम याति, ब्रह्माद्वयम अस्मि हम। इसलिए हम अद्वय ब्रह्म है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।